તારીખ 10/7/1992 શ્રી સમયસાર ગાથા 320 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું હૈદરાબાદમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 48
बहुत विस्तार से प्रवचन किए थे। जैन दर्शन का आगमन का और अध्यात्म का जो महत्वपूर्ण विषय है वो इस गल की टीका में समाविष्ट किया गया। ज्ञान में आत्मस्वभाव शुद्ध आत्मा को हो, शुद्ध स्वभाव को हो या सर्वविशुद्ध ज्ञान को टीका में ज्ञान का क्या स्वरूप है, यानी शुद्धात्म स्वभाव का क्या स्वरूप है, इसकी निगाहना है, इस विषय का है। इसमें एक दृष्टांत दिया है नेत्र का। जैसे मनुष्य के सभी अवयवों में नेत्र है वो सिर्फ जानने का कार्य करता है, इसके सिवा वो कुछ कर नहीं सकता। अच्छी चीज को वो ला दे, अच्छी नहीं लगे उसको हटा दे, वो नेत्र नहीं कर सकता। सिर्फ जानना उसका स्वभाव है। वैसे ही शुद्ध ज्ञान का मात्र जानना उतना ही उसका स्वभाव है। क्या जाने सभी को जाने, जो भी नहीं हो उसको जान ले। यहाँ तो आचार्य महाराज ने वो दिया है कि जो भी कर्मोदय होता है पुण्य का उदय हो तो उसको जाने, पाप का उदय हो तो उसको जाने, बंध जैसा होता हो उसको जाने, पुण्य पाप का बंध होता है, निर्जरा हो तो उसको भी जाने और मोक्ष हो तो उसको भी जाने। ज्ञान का कार्य सिर्फ जानना है और ऐसा जो ज्ञान का स्वरूप है वो इसका नाम स्पष्ट किया। जैम जैम नेत्र तैम ज्ञान मुक्ति कारक मुक्ति भेदक हरे। नेत्र वैसा है, वैसा ही ज्ञान है, वो कुछ करता भी नहीं और किसी की वेदना को भी ग्रहण करता है। जो जिसको करे उसको ही भोगे, वेदन करना मैंने अनुभव करना मैंने भोगना, अपने सिवा किसी को कुछ करता नहीं किसी को भोगता भी नहीं, सिर्फ जानता है। जाने जो कर्मों से कर्म का उदय को जानता है, जगरा बंद और मोक्ष को जो भी है उसको जान लेता है। नेत्र का दृष्टांत में ज्ञान का स्वरूप समझाया है। गाथा है उसमें कथा का विषय पहले ये दिया है कि ज्ञान का अकर्तृत्व और अभोक्तृत्व भाव को विशेष रूप से यहां दर्ज किया है। ज्ञान कुछ करता नहीं और किसी को भोगता भी नहीं, किसी पर को करता नहीं किसी पर को भोगता भी नहीं, ऐसा ज्ञान का स्वरूप है। उसको दृढ़ करते हैं गाथा के माध्यम से। दिखे स्वयं के नानंद अकार्यम अविद्यम सभी। जिस प्रकार नेत्र दृष्टि मैंने जिस प्रकार नेत्र करता हुए और दृश्य ऐसी अग्नि वस्तु को कुछ करे जैसे कोई संधोगण अग्नि जलाने वाला पुरुष कार्य करता हो उस प्रकार कुछ करे ऐसा कोई बनता नहीं। क्या है कि ज्ञान में अग्नि दिखती है तो अग्नि जलाने वाला अग्नि को बनाता है लेकिन नेत्र है वो अग्नि को बनाता नहीं जलाता नहीं अग्नि को पैदा नहीं करता। अग्नि को पैदा करने में क्या होता है जैसे कोई लकड़ी हो आदि जली हुई हो हवा देकर के थोड़ा और ज्यादा तेज करते हैं या उसमें कुछ ऐसी चीज जल्दी जलने वाली हो जैसे मिट्टी का तेल को ऊपर लगाने तो और तेज हो जाती है। ऐसा अग्नि को जलाने वाला जो कोई कार्य करता है वैसा कोई नेत्र कार्य नहीं कर सकता। नेत्र को जान सकता है अग्नि को जानना वो नेत्र का कार्य है लेकिन अग्नि को जलाना वो कोई नेत्र का कार्य नहीं है। तो दृष्टांत है एक तो कुछ अग्नि को करता नहीं वो कर्तृत्व का दृष्टांत दिया है। दूसरा किया है भोक्तृत्व का जैसे गर्म किया हुआ लोखंड का गोला होता है उतना गर्म किया उतना उतना गर्म किया तो वो अग्नि को भोगता है खुद ही अग्नि रूप लाभ दिखने में आता है। तो नेत्र को ऐसा होता है क्या अग्नि को भोगता है गर्म होता है नेत्र जानने के काल में जैसे लोहा गर्म होता है ऐसा कोई नेत्र थोड़ा गर्म होता है। बर्फ को जानने से नेत्र कोई ठंडा नहीं होता और अग्नि को जानने से नेत्र कोई गर्म कुछ भी नहीं होता। उसका तो दोनों को जानने का कार्य है भोगने का कार्य भी है। लोखंड के गोला की तरह अनुभव रूप से वेदन नहीं करता उसी तरह शुद्ध ज्ञान भी अथवा वेद से शुद्ध ज्ञान परिणत जीव भी शुद्ध ज्ञान कहो या शुद्ध ज्ञान स्वभाव परिणत जीव कहो तो ज्ञान और जीव अलग अलग नहीं है वो भी शुद्ध उपादान रूप से कुछ करता भी नहीं किसी का कुछ करता भी नहीं और किसी को भोगता भी नहीं है। उसका अलग भी अर्थ किया है आचार्य महाराज ने उसका भी प्रतिकन्या दिया है कि मात्र दृष्टि ही नहीं नेत्र ही नहीं परंतु शारीरिक ज्ञान भी निश्चय से कर्म का अकारक है और कर्म का अवेदक है। कर्म का उदय हो कर्म का बंध हो कर्म का निर्जरा हो कर्म का छुटना रूप मोक्ष हो किसी भी कर्म की अवस्था को ज्ञान कुछ करता नहीं। शारीरिक ज्ञान मैंने शुद्ध ज्ञान स्वभाव ज्ञान तो कर्म की अवस्था को कुछ करता नहीं कर्म की अवस्था को भोगता भी नहीं अनुभव नहीं करता। ये बात भोगने वाली थोड़ी कठिन दिखती है जैसे कर्म का उन्हें ऐसा आया शरीर में रोग की पीड़ा और वेदना का रोग है। तो कहते हैं कि शुद्ध ज्ञान उसको जानता है, उसको भोग नहीं सकता। हम क्या कहते हैं, हमें बहुत दर्द होता है, शरीर की अशांता का वेदन होता है। ज्ञान का स्वभाव में वो चीज है ही नहीं, तो फिर दुख किस बात का होता है कि मुझे हुआ है, इसका दुख होता है। किसका दुख होता है, मुझे हुआ है उसका दुख होता है। मुझे हुआ है वो एक कल्पना है, ऐसा कहते हैं। क्यों, कि ये कर्म की अजीव परमाणु की पर्याय है। अवस्था किसकी है, अर्थाता की, देह के परमाणु, शरीर के परमाणु की अवस्था है, वो जीव की अवस्था नहीं है। जीव उसको जान सकता है, भोग नहीं सकता। वेदना तीव्र है, मंद है, उसको जान सकता है, उसको भेदन नहीं कर सकता। ये एक बहुत बड़ी समस्या है सभी संसारी जीवों, कि वेदना एक ऐसी चीज है कि इसका कोई समाधान नहीं है। दूसरे दूसरे चीज के चीज का समाधान हो सकता है, कि निर्धनता आज है तो कल प्रवृत्ति करके कुछ प्राप्त कर लेंगे। कुछ भी नुकसान हुआ हो उसका हम कुछ न कुछ समाधान ढूंढ लेते हैं, लेकिन वेदना के लिए क्या करें। वेदना से छूटना चाहे तो भी छूट नहीं सकते। जब वेदना होती है तो वेदना से छूटना चाहे तो क्या कोई छूट सकते हैं क्या, क्यों ऐसा, इसका समाधान नहीं कर रहे। वेदना होने पर भी जीव इससे मुक्त हो सकता है, छूट सकता है, वेदना को जान सकता है, लेकिन वेदना को भोगे ऐसा बन सकता है, फल बन सकता है। शुद्ध ज्ञान का आश्रय हुए तो बहुत चमत्कारी विषय है।
श्रीमद जी का जो पत्र है उसमें 913 नंबर का पत्र है, वो आपने लिया था। कुछ बुद्धिमान लोगों ने इसका संशोधन किया कि वेदना ऐसी चीज है कि जिसमें कोई पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। दूसरे दूसरे प्रसंग में तो कोई ना कोई हमें आश्वासन मिल जाता है, कोई भी प्रसंग बनता है दुख का, लेकिन इसके लिए आश्वासन मिलता है, लेकिन वेदना में कौन सा आश्वासन। तो कुछ बुद्धिमान लोगों ने इसी विषय में भी संशोधन किया कि इसका भी कोई इलाज तो हमको निकालना चाहिए, कि वेदना का दुख हमें नहीं हो। तो उस विषय की खोज में निकलने वाले उन महापुरुषों ने एक बहुत सुंदर अनुभव किया कि जब जब उनको वेदना हुई उस वक्त वो अधिक आत्मकल्याणकारी पुरुषार्थ में लगे, और वेदना को तो नहीं भोगा लेकिन आत्मकल्याण ज्यादा कर दिया। तो इस प्रसंग को दुख का प्रसंग नहीं अनुभव करके आत्मकल्याण का प्रसंग का अनुभव किया, ऐसा एक चमत्कारी और महान पुरुषों ने इस विषय में की। और वो खोज वो है कि वस्तु का स्वभाव ही ऐसा है, आत्मा का स्वभाव ही ऐसा है कि ज्ञान अपने सिवा किसी अन्य पदार्थ को और अन्य पदार्थ की पर्याय को भोगनी भोगना चाहे तो भी एक वस्तु की स्थिति है। जैसे हम कहते हैं कि हमने लड्डू खाया मिठाई खाई ऐसा एक राग अवश्य हुआ है। इसकी अवस्था में क्या हुआ, मैंने खाया मैंने अच्छा खाया इतना राग हुआ। इससे आगे जीव का कोई कार्य नहीं, कार्य क्षेत्र ही नहीं है। जड़ परमाणु की अवस्था को भोगने का असंभव है और अशक्य है, इम्पॉसिबल है। एक वस्तु स्थिति है, तीन विषय ज्ञान का
व्यक्ति को कोई घात होता है जानता तो उसको भी है, खुद को लगता है तब भी जानता है, तो वहां तो उसको दूसरे को जानता है, दूसरे को लगता है तब तो वेदना नहीं होती है, लेकिन खुद को लगता है तब तो वेदना होती है।
वेदना तो ऐसा है कि जिसमें अपनत्व है उसमें वेदना होती है। जैसे अपना लड़का हो, छोटा बच्चा हो, प्यार, उसको घाव लगेगा तो कितना टेंशन आता है कि नहीं आता है। वेदना किस चीज की है, जहां अपनत्व है वहां वेदन होता है, भले क्रांतिगत रूप से अपना नहीं है उसमें तो यही बात होगी। ऐसे शरीर में अपनत्व है तो वेदना है क्या, शरीर में अपनत्व है तो वेदना का ज्ञान होता है, दुख नहीं होता। कितना बड़ा चमत्कार है, वेदना होने से वेदना का ज्ञान होवे और दुख नहीं होवे ये कोई मामूली बात है क्या। किसी से भी कोई लौकिक इलाज ऐसा तो नहीं है कि वेदना को हम दूर कर सके, कि पेन किलर का असर चलता है लेकिन उसका भी नहीं है। वो भी ज्यादा वेदना होती तो या ज्यादा वेदना में रस होता है मुझे ये हो गया है तो उसके असर नहीं होते। डॉक्टर क्या कहेंगे, तो उसको लागू नहीं पड़ता है इंजेक्शन कहीं। हमने तो देखा है तो भाई सब बात कर दिया उसको, कोई इंजेक्शन कितना भी दिया था कुछ नहीं होता था, अपना को विशुद्ध हो जावे ना, उसको गेंद लगा दे जिंदा लगा दे। रात्रि का समय सात बजे तो शाम को सात बजे इंजेक्शन एक्सीडेंट हुआ था और सारी रात इंजेक्शन देने पर भी वो सोए नहीं थे, क्या कारण है, वहां कोई इलाज काम नहीं करता। लेकिन ज्ञानियों का ज्ञान का जो इलाज है वो काम करता है, अद्भुत विषय है, चमत्कारिक विषय है। ये चैतन्य का चमत्कार है कि ज्ञान का अनुभव हुए, ज्ञान को अपने आप का अनुभव हुए और नजदीक में जो शरीर है उसका वेदन नहीं है। इधर तो कुछ नहीं है, नाभि में बहुत वेदना है, नाभि में इतनी वेदना है कि इसका कोई एक अंश भी इधर दिखने में नहीं आता है, इतनी वेदना वहां होती है। फिर भी वहां सुमित दृष्टि को सुख का भोगना होता है, अंतर सुख रस बता दे, घटक घटक टूटे हैं सुख रस वेदना, और सबसे ज्यादा वेदन साथ में नाती है, पहले से निकल के जैसे जैसे बिकते जाते हैं वेदना होती है। और सातवीं नाती में भी स्वानुभव होता है, वेदना को उल्लंघन करके स्वरूप का आनंद में ये चला जाता है, परीक्षण भर के दिया जाता है, लेकिन दूसरा रस से तीव्र रस से वो अनुभव करता है कि फिर विकल्प में आते हैं तो किसी की परिणति चालू हो जाए छोटी। अनुभव का बल है या वेदना का बल है, किसका बल है? अनुभव का ही शक्ति है कि सातवीं नारकी की वेदना को उल्लंघन करके ओवरटेक करके वो अपने आनंद में डूब सकता है। इतनी एक बहुत महान उपलब्धि है वो आत्मा के स्वयं के जीवन की ये उपलब्धि है। चक्रवर्तियों ने छह खंड का राज किस आनंद के लिए, कैसा आनंद के लिए छोड़ा हुआ, उनको क्या कमी थी, किस बात की कमी थी? जिसके आहार के मेष के आहार में गिरे की भस्मा इतनी हो गए कि इनके जो लड़ाई करने वाले सोल्जर है वो पता नहीं चले, वो खबर तो करते लग जा रहे। इतना सभी तरह का उनका जो पतंजलि का विषय है उसमें कोई कमी ना नहीं होती, फिर भी वो आत्मा के आनंद के वश जिसका रस उड़ जाना, सारे वैभव का रस उड़ जाना, तो बहुत मामूली बात मिल जाती है। कैसी चीज होती है विचार कर लेना एक चीज है। यहां सातवीं नारकी को छोड़ सकते हैं, इधर चक्रवर्ती के वैभव को भी छोड़ सकते हैं, इस आनंद के वशा, इस सुख के वशा आप पैदा हो सकते हैं। यह अपना महाराज जी कहते हैं कि शुद्ध ज्ञान का स्वभाव है या शुद्ध ज्ञान परिणत जीव का यह स्वभाव है कि वो किसी भी कर्मों के को, कर्म के बंध को, कर्म के निर्जरा को और कर्म के मोक्ष को वो जानता है, कुछ करता भी नहीं और भोगता भी नहीं। तो करता भोगता नहीं तो लॉजिक ही ऐसा है कि जिसको करे उसी को भोगे, जिसको कर नहीं सके उसको भोगे। कर्तृत्व भोक्तृत्व एक ही पदार्थ में संभवित है, भिन्न पदार्थ में कर्तृत्व भोक्तृत्व का कोई संभव नहीं। ये तो पदार्थ का साइंस ही ऐसा है, विज्ञान ही ऐसा है। कहते हैं कि क्षय ज्ञान भी निश्चय से कर्मों का अकारक और अविदत भी है। ऐसे होता हुआ क्या करता है शुद्ध ज्ञान परिणत जीव, क्या करता है ऐसा होता हुआ कि जानता है, सिर्फ जानता है, जानता है मैंने सिर्फ जानता है। किसको जानता है? बंध और मोक्ष को जानता है, मात्र बंध और मोक्ष को जानता है उतना ही नहीं, शुभ अशुभ रूप कर्मोदय का भी जो विपाक है, कर्मोदय और उसका जो स्विपाक है और अविपाक है, सकाम है और अकाम निर्जरा है, कर्मोदय और उसकी जो निर्जरा है उसको उसको जानता है, उस कर्ता पता जैसे किसी ज्ञानी को पाप का पूर्व किया और पाप का उदय आता है तो उसको क्या अनुभव होता है, किस प्रकार का उसको अनुभव होता है? तो उसको ये अनुभव होता है कि मेरे में कुछ होता नहीं, क्या जो भी हो रहा है वो मेरे से बाहर कुछ और जगह हो रहा है, मेरे में कुछ हो रहा क्यों? कि मेरे शुद्ध ज्ञान में न कुछ आता है न मेरे शुद्ध ज्ञान में कुछ जाता है। ज्ञान को शुद्ध ज्ञान रूप मात्र जानने रूप अनुभव में आ रहा है, ये अनुभव से बात इतनी पक्की होती है कि अनुभव में कोई शंका पड़ने की गुंजाइश नहीं, प्रत्यक्ष अनुभव है।
तो केवल छाई ज्ञान को कुछ होता है, केवल छाई ज्ञान को लेकर
छाई ज्ञान मैंने शुद्ध ज्ञान, शुद्ध ज्ञान और शुद्ध ज्ञान परिणत जी
केवल ज्ञान कैसा
नहीं ऐसे तो था। यहाँ तो समय साथ में तो पुण्य दृष्टि की भी बात करी है, निराश की बात करी है, न केवल ज्ञान की जो समय दृष्टि होता है वो तो अपना स्वरूप को शुद्ध ज्ञान रूप अनुभव करता है, ऐसा ही उसको परिणाम हो जाता है। तो परिणाम होता है भाव से भिन्न हो गया, कुछ वेदन नहीं अनुभव नहीं। उसका और एक दृष्टान क्योंकि ये वेदना का विषय ऐसा लगता है कि इतनी शरीर में वेदना हो गए और अनुभव नहीं करे वो बात कैसे बन सकता है? दृष्टान कि ऐसा कोई वेदना में रहा हुआ जीव कोई दूसरा ऐसा प्रसंग बन जाए कि जैसे किसी का इकलौता लड़का 25 साल से गुम हो गया हो, अपहरण हो गया हो, कुछ भी हो गया हो और तो वेदना के काम में आ जाए तो क्या होगा? उतना हर्ष से विवर हो जाएगा कि अपने वेदना को उस वक्त भूल जाएगा, भूल जाएगा कि नहीं भूल जाएगा? क्या वेदना इसको चल निकल गई है, क्या मिट गई है? क्या वेदना चालू है फिर भी उपयोग में नहीं है, वहां क्या हुआ है? उसका उपयोग वहां नहीं है, उपयोग जो लड़का आया उस पर हो गया, क्षण भर के लिए उसको लगता कि मैं स्वप्न में तो नहीं, जागृत अवस्था में तो देखता हूं उसको, तो उपयोग छूट जाता है। तभी एक कषाय को क्या है, कषाय है या तो शुद्ध परिणाम है, तो कषाय का परिणाम ये लड़का मेरा और जो मैंने गवाया था वो मिल गया तो वो एक कषाय है। एक कषाय भी वेदना से जीव को छुड़ा सकता है, तो एक कषाय परिणाम क्या वेदना को वेदना से नहीं छुड़ा सकता? क्या हिसाब किताब तो लगा सकते हैं? एक कषाय भी वेदना रूप दूसरी कषाय से छुड़ा देता है, तीव्र होना चाहिए वेदना से, ये तीव्र हो गया बहुत दुख गया सब लोग। तो ये तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के परिणाम है, धर्म के जो परिणाम है वो तो एक कषाय भाव स्वरूप है, न तो कषाय का अंश भी नहीं है, उसको यहां शुद्ध ज्ञान कहते हैं। तो उसमें वेदना का अभाव हो गया उसमें कौन सी बड़ी बात है या कौन सी नई बात है या कौन सी असंभव बात है? शक नहीं कि अभी भी जो सम्य दृष्टि जीव नरक में मौजूद है उनको दुख का अनुभव नहीं है, दुख का अनुभव है, दुख का दाते का दुख का अनुभव नहीं है, किंतु दुख का अनुभव है उसको। आखिर में हर बात जो है वो सुख दुख में कैसे लागू होती है, इस प्रयोजन से हमें इस बात को ग्रहण करना है। अब उसकी टीका सर्व विशुद्ध परिणामी परम भाव ग्राहक शुद्ध उपाधानुभूत शुद्ध द्रव्यात्मिक नैसे जीव कर्तृत्व भोक्तृत्व से तथा बंधन मोक्ष के कारण के कारण के परिणाम से शून्य है, ऐसा समुदाय पात्रिका में जीने में आया था। आगे की बात क्या है, उसे चल गया है, उसे में आगे की गाथाओं के समुदाय समुदाय मैंने टोटल शर्त उतनी है कि शुद्ध द्रव्यात्मिक नए से वो जाना जाता है। नए मैंने क्या चीज है, उनको आचार्य महाराज की जैन शास्त्र की परिभाषा से भी बात लौकिक भाषा ऐसी नहीं, तो सारी भाषा में कुछ बात करते हैं। आचार्य महाराज ने शास्त्र परिभाषा में बात किया है, शुद्ध द्रव्यात्मिक नये मैंने क्या कि शुद्ध द्रव्य को ग्रहण करने का जिसका उद्देश्य है ऐसे ज्ञान के अंश को शुद्ध द्रव्यात्मिक नये मैंने आता है। देखिए हम जानते हैं उसमें जानने जानने में उद्देश्य होता है अलग अलग, एक ही प्रसंग को कोई और बात से बताता है, कोई और बात को बताता है कि नहीं बताता है, तो क्या होता है, कोई भी प्रसंग बनता है तो इसका जैसा दृष्टिकोण वैसे वो खतानी करेगा और उस खतानी के अनुसार उसका मूल्य करेगा। तो देखने का जानने का भी एक उद्देश्य होता है, ज्ञान में एक उद्देश्य होता है, उस उद्देश्य से जैसे 15 अगस्त में लिया कि हम सब्जी को चखते हैं, हमारे यहाँ बड़ा 1500 आदमी का भोजन बनता है, भोजन समारोह होता है, थोड़ा समझ में लेकर रखते हैं, तो उद्देश्य क्या है हमारा कि कोई नमक कम बेसी तो नहीं है, मिर्च कोई कम बेसी तो नहीं है, खट्टाई डाली है उसमें तो कोई कम बेसी पड़ा नहीं है, तो एक उद्देश्य से हम देखते हैं। डालने वाले ने कितना भी डाला हो हमें पता नहीं है, और इसमें इतना घुल मिल गया है कि अलग अलग दिखता नहीं है कि किस प्रमाण में प्रयोग किया है नमक का मिर्च का वगैरह, लेकिन ज्ञान में चखने में उद्देश्य लेकर के जब हम परीक्षा करते हैं तो उनको पता चल जाता है कि उसको कुछ कमी है या ज्यादा है या बराबर है, किन में से एक जजमेंट हम निकाल लेते हैं। तो अब ज्ञान को इस तरह से हमें देखना है, इस दृष्टिकोण से देखना है कि शुद्ध स्वरूप उसका क्या है, क्या उसका स्वभाव क्या है। ज्ञान में स्वभाव के दृष्टिकोण से ज्ञान को देखना है, अपने आप को देखने वाला भी ज्ञान है, किसको देखता है जानता है क्या? अपने आप को जानता है। किस उद्देश्य से जानता है? तेरा स्वभाव क्या, क्या मेरा स्वभाव क्या है? तो इस स्वभाव से देखे तो उसको शुद्ध प्रज्ञा की नहीं कहते हैं। ऐसा उद्देश्य को क्या कहते हैं? शुद्ध स्वरूप को जानने का जिसमें अभिप्राय हो, दृष्टिकोण हो, उसको शुद्ध द्रव्यास्ती नहीं कहते हैं। और ये शुद्ध उपादान, शुद्ध उपादान बुद्ध में है, उसमें शक्ति है। सामर्थ्य क्या है? सामर्थ्य को देखता है साथ स्वभाव के साथ, स्वभाव का सामर्थ्य देखता है। जमीन में से ये मिट्टी का तेल निकलता है, पर एक क्रूड फॉर्म में निकलता है, फिर आगे रिफाइनरी में जाके फिर पेट्रोल डीजल केरोसिन वगैरह अलग अलग प्रोडक्ट निकलती है। लेकिन जब जमीन में से निकलता है तो उसका फोर्स देख करके और वो सतत निरंतर 24 घंटा जिस फोर्स से बाहर आता है तो वो जो ड्रिलिंग किया है उसको 1000 मीटर 2000 मीटर नीचे जाता है, इतना बहुत नीचे जाता है। वहां कोई माथा डाल सकता नहीं है कि कितना पड़ा है, माथा डालता है माथा। ये तो 4 इंच का 6 इंच का बोर होता है और 1000-2000 मीटर नीचे जाकर के फिर यहां से जो डिपॉजिट पड़ी है मीटर में भूगर्भ में, वहां से इतना फोर्स से वो बाहर आता है, कोई मशीनरी नहीं लगानी पड़ती, बाहर निकालने के लिए कोई पंप नहीं लगाना पड़ता। वैसे ही अपने आप फोर्स से बाहर आता है। इस पर से अंदाजा लगाना लगाते हैं कि वहां कितना माल पड़ा है, कितना माल पड़ा है कि उतने करोड़ क्यूबिक मीटर है, ऐसे करके लगा देते हैं। कहां से पता चला? जो जिस अंश में वो बाहर आता है उस अंश में से उसका पूरा डिपोजिट कितना पड़ा है उसका पता चलता है। वैसे हमारे हर प्रदेश में से अनादिकाल से ज्ञान उभर करके बाहर आ रहा है, प्रदेश प्रदेश से बाहर आने के लिए हम क्या करना पड़ता है? ज्ञान को उत्पन्न होने में हमें क्या करना पड़ता है? किताब पढ़नी पड़ती है क्या? किसी का व्याख्यान सुनना पड़ता है क्या? तो उतना डिपोजिट भरा है, ज्ञान का उतना भंडार है भीतर में कि अनंत काल से वो सतत रूप से निरंतर रूप से हम प्रदेश में सलाम निकल पाएगा। अगर उनको स्वभाव के दृष्टिकोण से देखें, स्वभाव के दृष्टिकोण से देखें, ऐसा कहें या शुद्ध उपादान बुद्ध जो शुद्ध द्रव्यात्मिक नहीं है उस प्रकार से देखें तो सर्व शुद्ध उसका जो परम स्वरूप है, परम स्वरूप में उत्कृष्ट स्वरूप है, पूरा अनंत सामर्थ्य ऐसा जो इनका स्वरूप है ज्ञान को परम भाव ग्राहक ऐसा नहीं कहने में आया है। और फिर से अब जो है भाषा सरल हो जाएगी कि जिस ज्ञान के अंश का प्रयोजन उद्देश्य ऐसा है कि अपना सर्व विशुद्ध स्वरूप को देख सकते हैं, अपना पारिणामिक भाव को देखें, मैंने अनादि अनंत हीरे को रूप कॉमन फैक्टर जिसको कहते हैं वो कैसा है, और वो परम भाव मैंने उत्कृष्ट सामर्थ्य कैसा है, उसमें शक्ति है वो शक्ति कैसी है, कितनी है, इस दृष्टिकोण से देखें तो ऐसा देखने में आएगा वो कर्तृत्व कर्तृत्व से शून्य है। कैसा है कर्तृत्व कर्तृत्व से शून्य है, किसी भी पर पदार्थ का कुछ कर सके या भोग सके अनुभव कर सके ऐसा हो सकता। अब शक्ति को कैसे देखें, हमारे पास जो व्यक्त ज्ञान है प्रकट ज्ञान है वो बहुत अल्प मात्रा वाला है, बहुत थोड़ा ज्ञान है हमारे पास, और भीतर में केवल ज्ञान का भंडार पड़ा है, सभी आत्मा में अभाव है, अनंत 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 बेसुमार ज्ञान भरा है, इसका पता कैसे चलेगा। जैसे अग्नि का एक कण होता है, शक्ति कितनी, सारी दुनिया को जलावे कितने, कौन छोटा है अग्नि का, मैं गुजराती में निखारा कहते हैं, क्या कहते हैं स्पार्क जिसको बोलते हैं, अग्नि के कण में शक्ति कितनी, कितना पेट्रोल को जलावे हो, कितनी रुई को जलावे, सारी दुनिया में ऐसे कितनी हुए तो सबको जला जाए, एक क्षण में उतनी शक्ति है देख सकते हैं, नहीं देखे तो हम उसकी सावधानी नहीं रख सकते, अग्नि के एक क्षण की सावधानी हम क्या रखते हैं कि कहीं भी पेट्रोल हो कहीं भी रूई हो कहीं भी जल्दी से जलने वाला पदार्थ हो उसको दूर क्यों रखते हैं, छोटा कण है क्या करेगा, ऐसा रखते क्या, कौन छोटा है तो क्या है, उसमें शक्ति कम नहीं है, अनंत शक्ति उतनी है, कितनी बड़ी है, एक अग्नि के कण में सारे विश्व को जलाने की शक्ति, जो भी जलने योग्य है सबको जलाने की शक्ति उतनी है, वैसे ज्ञान के एक अंश में शक्ति को देखना है, अंश को नहीं देखना है, उसको शुद्ध उपादान ग्राहक ज्ञान का नहीं कहने में आता है, उपादान कहने शक्ति अनुभव प्रकाश साहब कहते हैं कि तेरे दर्शन और ज्ञान के उपयोग द्वारा स्वरूप शक्ति को देखना है, क्या देखना है, स्वरूप की शक्ति को देखना है, तो उसका रूप ऐसा है, ऐसा कहते हैं कि वो कर्तृत्व और भोक्तृत्व से शून्य है, किसी का कुछ करे या किसी को भोगे ऐसा बन ही नहीं सकता, होते हैं जंगल में, उनको सर्प काटते हैं या कोई जंगली प्राणी भी उसको खाते हैं, फिर भी वो आत्मध्यान में कैसे रहते हैं और आत्मध्यान से विचलित क्यों नहीं होते, उसको दुख क्यों नहीं होता, कि ऐसा जो स्वरूप है उसको ग्रहण कर लेता है, उसको ग्रहण कर देते हैं और जगह से उपयोग शून्य हो जाता है, इसलिए पता ही नहीं चलता है कि शरीर में क्या हो रहा है, मुनियों को तो पता ही नहीं चलता है कि कोई शरीर को खाता है कि नहीं खाता है, कोई स्पर्शता है कि कोई नहीं स्पर्श करता है, पता ही नहीं चलता, ऐसा अतिंद्रिय उपयोग हो जाता है, और मोक्ष के कार परिणाम बंध के परिणाम रूप नहीं है, मोक्ष के परिणाम रूप नहीं है, उसके कारण जो आश्रम है उससे भी शून्य है और मोक्ष के कारण उम्र निर्जरा है उससे भी शून्य है। ऐसा हम आगे के समुदाय से कह चुके हैं। क्या प्रारंभ किया कि ऐसा तो हम कह चुके हैं आगे। खीर जो चार करता है उसके द्वारा जीव का और कुर्तुकु का व्याख्यान की मुख्य बात सामान्य वर्णन विवरण करने में आया कि जीव है तो अकर्तुत्व गुणधारी है, राग को करना या कर्पराग को करना ऐसा कोई स्वभाव ऐसी कोई शक्ति ऐसा कोई गुण जीव में है ही नहीं। उपदेश चक्र ये कहेंगे कि राग को मिटा दो, राग दुखदायक है, राग आग दहे सदा नाते समाप्त। कहते हैं कि सवाल ही नहीं है ऐसा। ऐसा अपना स्वरूप का आश्रय होते ही राग का ज्ञान होगा फिर पैदा होगा क्या तो पैदा होने होने का ही बंद हो जाएगा, दूसरा का हो जाएगा, लेकिन कर्तव्य रहेगा। सम्यक दृष्टि जीव को सर्वथा राग का अभाव नहीं होता, उसको राग का सद्भाव होता है, फिर भी उसको ऐसा अनुभव नहीं होता, वो महसूस नहीं करता कि राग मेरा स्वभाव से मैंने किया। एक न्याय से अपनी अवस्था में हुआ है फिर भी मैंने नहीं किया, क्या मैंने नहीं किया, मैंने जाना है लेकिन किया ऐसी बात। परिणाम इनका हमने प्रतियोग उसका जानने वाला रहता है करने वाला। क्या कारण है अकर्तृत्व स्वभाव का ये परिणाम है, अकर्तृत्व स्वभाव का भी परिणाम साथ साथ प्रकट होता है। का व्याख्यान की मुख्यता से सामान्य वर्णन करने में आया। फिर उसके बाद चार गाथा द्वारा शुद्ध ने शुद्धा शुद्ध को भी जो प्रकृति साथ साथ का बंध होता है वह अज्ञान का महात्म है ऐसा अज्ञान का सामर्थ्य रूप कहने रूप विशेष वर्णन करने में आया। वो आगे की बात क्या क्या बात कर ली है सब सारा है कि अज्ञान अवस्था में आत्मा स्वभाव से शुद्ध होने पर भी उसको संबंध होता है बंध होता है। एक ज्ञान का भी बहुत बड़ा महिमा है कि स्वभाव से जीव शुद्ध होने पर भी अनंत काल से संसार दूर हो रहा है प्रबंधन में पड़ा है। इसका भी हमने आगे वर्णन कर दिया चार करना हो। उसके बाद में चार करना द्वारा जीव का और भौतिक गुण का व्याख्यान करने में आया। जैसे अभौतिक का कहा ऐसा अभौतिक का भी कहा। उसके बाद दो गाथा कहने में आई जिसके द्वारा पूर्व जो बार का था मैं शुद्ध निश्चय से कर्तृत्व का अभाव तथा बंध और मुख का कारण और परिणाम का अभाव रूप जो व्याख्यान करने में आया था उसका ही उपसंहार करने में आया था। इस प्रकार से समय सार की शुद्धात्मा अनुभूति लक्षण तात्पर्य वृत्ति नाम की टीका में मोक्षाधिक मोक्ष अधिकार स्थिति सुविधा समाप्त हुई। अधिकार के पहले जो मोक्ष अधिकार था उसका संक्षेप आगे भी करना शुरू कर दिया था। अब दूसरे प्रकार से व्याख्यान करते वक्त यहाँ पर मोक्ष अधिकार समाप्त हुआ है और आगे विशेष कहने में आता है, ऐसा करके जो प्रस्तुत गाथा है इसकी चालू करेंगे। इसके पीछे तो आगे जो चल गया वो सब संक्षेप में किया, वो बाकी निकालने तो मैंने एक पद्धति आकार रेफरेंस बता करके चालू करता निकाल करें।
भगवती महाराज।